नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन पर दूसरा कॉन्क्लेव नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने हैरी बॉक्सर गिरोह और राजू बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर में आयुष्मान आरोग्य केंद्र की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय दिल्ली मेट्रो की गौरवशाली यात्रा को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के रोकथाम में मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर बल दिया, जो बिजली जैसी स्वच्छ ऊर्जा से चलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा परिवहन से आता है, जहां सड़कों पर लाखों वाहन चलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देने वाला दिल्ली वास्तव में करीब 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन लाखों गाड़ियों में से कई के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और उत्सर्जन हवा को प्रदूषित करता है और सांस लेना मुश्किल बना देता है। उन्होंने कहा कि यह सबकी जिम्मेदारी है कि अगर दिल्ली को सांस लेने योग्य बनाए रखना चाहते हैं, तो सभी को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने युवाओं से अपील की कि वे यहां आएं और दिल्ली के विकास में दिल्ली मेट्रो के योगदान का अनुभव करें।
आज मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए, दिल्ली को बेहतर और हरा भरा रखने के लिए। आज बिना मेट्रो अगर हम सोचें तो हम दिल्ली को इमेजिन नहीं कर सकते, और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा।
वहीं श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार मेट्रो के सभी लंबित निधियों का भुगतान कर रही है ताकि संचालन में बाधा न हो और दिल्ली वासियों की यात्रा सुगम हो।
दिल्ली मेट्रो जिस से दिल्ली में काम कर रही है, उनके सारे फंड हम क्लियर कर रहे हैं और दिल्ली मेट्रो को जो भी मदद चाहिए होगी दिल्ली सरकार उसके लिए हमेशा तैयार रहेगी।
वहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो से रोजाना 35 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर पेंटिंग प्रदर्शनी का दौरा किया। संसद कला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित ये प्रदर्शनी कला के शक्तिशाली माध्यम से सशस्त्र बलों की वीरता, बलिदान और सेवा भावना को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शनी देश के बहादुर सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को हर नागरिक तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ग्रैप के दौरान दिल्ली में निर्माण कार्यों को बंद करने का फैसला किया गया है, जिससे दिहाड़ी पर काम करने वाले निर्माण मजदूरों की आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप के दौरान बंद रहे निर्माण कार्यों की वजह से श्रमिकों की आय की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी और निजी कर्मियों को 50% घर से कार्य करने की छूट प्रदान की जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और उसका सत्यापन लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होती जाएगी, उसी क्रम में श्रमिकों के बैंक खातों में सहायता राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर है, ग्रैप 3 का कंपनसेशन ₹10,000 सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैप 4 के लिए भी, जब ग्रैप 4 समाप्त होगा, ग्रैप 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैप 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास किया है। आज नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश ने वित्तीय समावेशन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, बेहतर पोषण के साथ साथ परिवारों के लिए वित्तीय तथा बैंकिंग पहुंच को सुनिश्चित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम नागरिकों के निर्धारित प्रीमियम पर न्यूनतम बुनियादी बीमा सुनिश्चित किया है जो बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों के लिए भी सरकार ने सड़कों को राजमार्गों से जोड़ने, बाजार तक पहुंच बनाने और समग्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
इंश्योरिंग बेसिक,
हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परिवारों को बैंकिंग, न्यूनतम बुनियादी बीमा और किफायती प्रीमियम वाली सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो, ताकि छोटे और हाशिए पर रहने वाले लोग भी इसके दायरे में आ सके। बुनियादी जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी हमारी प्राथमिकता है।
बेसिक होलिस्टिक हेल्थ।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली वासियों को किफायती, सरल और पारदर्शी आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड DCHFC के अधिकारियों को समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। इसके अंतर्गत अगले माह रोहिणी में DCHFC का नया कार्यालय खोला जाएगा, जिससे उत्तर पश्चिम दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली में DCHFC का दूसरा कार्यालय होगा। श्री सिंह ने बैठक में DCHFC के लगातार विस्तार के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संवाददाताओं से कहा कि कल से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास उचित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है।
दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कोई भी सरकार 9-10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन पर दूसरा कॉन्क्लेव आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाचार्य आवासीय स्कूलों में शैक्षणिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रणालियों और संस्थागत शासन को मजबूत करने पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव के दौरान एक प्रशिक्षण संसाधन सामग्री, 4th EMRS खेल मीट 2025 रिपोर्ट, 6th उद्भव 2025 रिपोर्ट और 2री EMRS प्रधानाचार्य कॉन्क्लेव पुस्तक जारी की गई। दिल्ली नगर निगम MCD ने आज दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर में आयुष्मान आरोग्य केंद्र की शुरुआत की। MCD ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, परामर्श सेवाएं और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की सुविधाएं अब पास में ही उपलब्ध होंगी। दिल्ली में नगरपालिका परिषद NDMC एक निजी संस्था के साथ मिलकर शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ चुने गए गुलाबों के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस प्रदर्शनी में दिल्ली NDMC के साथ ही PGI चंडीगढ़, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा और बाहर से आए अन्य संस्थान अपने सबसे अच्छे गुलाब के फूलों को प्रदर्शित करेंगे। NDMC ने बताया कि लोगों के लिए प्रदर्शनी शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय ने आज नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया। इस दौरान BSNL, MTNL और दूर संचार विभाग के पेंशन भोगियों के पेंशन भुगतान, पेंशन में बदलाव और अन्य लाभों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की गई और उनका समाधान किया गया। इस अवसर पर प्रधान नियंत्रक संचार लेखा आशीष जोशी ने कहा कि पेंशन अदालत पेंशन भोगियों की चिंताओं को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये कार्यक्रम पेंशन भोगी कल्याण पर विशेष जोर देते हुए आयोजित किया गया, जिसमें पेंशन भोगियों को उनकी शिकायतों की स्थिति और उनके त्वरित तथा प्रभावी निवारण के लिए उठाए गए उपायों से अवगत कराया गया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने हैरी बॉक्सर गिरोह और राजू बिश्नोई आपराधिक नेटवर्क से जुड़े 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 3 हत्या मामलों में शामिल हैं। इनमें इंद्रजीत सिंह की हत्या, अमृतसर में आशु महाजन की हत्या और सोनू नोल्टा का मामला शामिल है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विशेष शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि तकनीकी निगरानी, फील्ड इंटेलिजेंस और प्राप्त जानकारियों के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी दोनों गिरोह के सरगनाओं के लिए शूटर के रूप में काम कर रहे थे और लक्षित हत्याओं को अंजाम देने में शामिल थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ऊंचे पहाड़ी इलाके और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए आज 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 वाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीनें उपलब्ध कराईं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की पहल सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने और चिकित्सीय देखभाल को और ज्यादा मजबूत करने में योगदान देना है। ये मेडिकल उपकरण संबंधित मेडिकल रेजिमेंट के अनुरोध पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ऑक्सीजन शाखा के सहयोग से मुहैया कराए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय हित और सैनिकों के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में अस्थायी राहत मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब भी आरोपी हैं। इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अदालत ने जमानत पर बाहर चल रहे कांग्रेस नेताओं को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में बढ़ते सबूतों को देखते हुए भविष्य में मुकदमा चलाया जाना अपरिहार्य है। दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में जारी राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनंतजीत सिंह नारूका और दर्शना राठौर की जोड़ी ने सीनियर स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जोड़ी ने मेराज अहमद खान और अरीबा खान को कड़े मुकाबले में 45-43 से हराकर खिताब अपने नाम किया। राइजा ढिल्लों और ईशान सिंह लिब्रा की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर जूनियर स्केट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में युवेक बटुल्ला और लक्कू वेंकट लक्ष्मी की जोड़ी ने खिताबी मुकाबला जीता। यशस्वी राठौर और यशवर्धन एस राजावत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं हरमेहर सिंह लल्ली और परमीत कौर की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी में वायु गुणवत्ता आज खराब स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन किया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन पर दूसरा कॉन्क्लेव नई दिल्ली में सम्पन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वीर रंग ऑपरेशन सिंदूर पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने हैरी बॉक्सर गिरोह और राजू बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर में आयुष्मान आरोग्य केंद्र की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।